ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलम्, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साक्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम्, साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्, श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो टुडे वी विल रिसाइट फ्रॉम श्रील प्रभुपाद लीलामृतम्। वेर एग्जैक्टली इज द बुक मार्क हियर? From which paragraph should I start? From 90th or the 91st? Or I think we can just start from here. Okay. So Srila Prabhupada Leelamritam, written by His Holiness Satswarup Das Goswami Maharaj. The chapter is entitled as On the Bowery. Prabhupada had hope for what the voice article had referred to as his American church. There was life in his lectures and kirtanas, and at least he was acquiring a small regular following. But from India there was no hope. He had continued corresponding with Sumati Morarji, his godbrothers, and the Indian central government, but their replies had not been encouraging. In the faith that Padampata Singhania would agree to his plans for a Krishna temple in Manhattan and finance its construction, Prabhupada had petitioned New Delhi to sanction the release of foreign exchange. He had written to the Reserve Bank of India, New Delhi, "I want to establish this cultural center, and for this I wish to get some exchange from India. I think there are good prospects all over the world for propagating the culture of how to love God in these days of forgetfulness." A month later, the Indian bank had advised him to resubmit his request through the Indian embassy in Washington to the finance minister of the Indian central government. Prabhupada had complied, and another month had passed with no word from the government. One of his godbrothers had written that Swamiji should come back to India and work personally to get the government's sanction. But Prabhupada didn't want to leave America now. He wrote to Sumati Morarji, "I am trying to avoid the journey to India and again coming back, especially for the reason that I am holding at the above address classes thrice a week and training some American youth in the matter of Sankirtan and devotional service to the Lord. Some of them are taking the lessons very sincerely, and in the future they may be very good Vaishnavas according to the rigid standards. One day a curious, unsolicited correspondent wrote to Prabhupada from India. His name was Mukti Brahmachari. Introducing himself as a disciple of one of Prabhupada's godbrothers and reminding Prabhupada of their past slight acquaintance, Mukti wrote of his eagerness to join Prabhupada in America. Certainly Prabhupada still had hopes for getting assistance from his godbrothers in India. This mission is not simply one man's work. Therefore he invited Mukti to come to America and asked him to request his guru to cooperate by working personally to secure government sanction for the release of foreign exchange. Mukti wrote back, reaffirming his eagerness but expressing doubt that his spiritual master would give him permission. Mukti thought he should first come to the United States and then request his spiritual master's help. Prabhupada was annoyed and he sent an immediate reply. Is preaching in America my private business? Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati wanted to construct some temples in foreign countries as preaching centers of the message of Srila Rup and Raghunath, and I am trying to do this in this part of the world. And then there is a footnote given in this context. Srila Rupa Goswami and Srila Raghunath Das Goswami were two leading disciples of Lord Chaitanya in the 16th century. Thus ends the footnote. And I am trying to do this in this part of the world. The money is ready and the opportunity is open. If by seeing the finance minister this work can be facilitated, why should we wait because you cannot talk with your Guru Maharaj about cooperation because you are afraid your journey will be cancelled? Please do not think in that way. Take everything as Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada's work and try to do the needful. Do not think for a moment that my interest is different from that of your Guru Maharaj. We are executing the will of Srila Prabhupada according to our own capacity. A combined effort should have been far better. Mukti submitted the entire proposal before his spiritual master, who, as Mukti predicted, cancelled the trip. Although Mukti's guru was Srila Prabhupada's godbrother, he did not want to be involved, and he doubted that Prabhupada would actually get a donation from Padampat Singhania. And now Mukti Brahmachari also doubted, if your program is not bona fide, the approach to a big personality will be a ludicrous one of no doubt. On the same day that Prabhupada received the ludicrous letter, he also received the final blow of non-cooperation from the Indian government. Second Secretary Prakash Shah of the Indian Embassy in Washington, D.C. wrote, due to existing conditions of foreign exchange stringency, it is not possible for the government of India to accede to your request for release of foreign exchange. You may perhaps like to raise funds from residents in America. It was confirmed Prabhupada would have to work without outside help. He would continue alone in New York City. His last letter to Mukti Brahmachari reveals his deep faith and determination. So, the controversy is now closed and there is no need of help from anyone else. We are not always successful in our attempts at preaching work, but such failures are certainly not ludicrous. In the absolute field, both success and failure are glorious. Even Lord Nityananda pretended to be a failure at converting Jagai and Madhai in the first attempt. Rather, he was personally injured in such an attempt. But that was certainly not ludicrous. The whole thing was transcendental and it was glorious for all parties concerned. If Krishna consciousness were ever to take hold in America, it would have to be without assistance from the Indian government or Indian financiers. Not even a lone Indian brahmachari would join him. Krishna was revealing his plan to Prabhupada in a different way. With the Singhania sanction schemes finished and behind him, Prabhupada would turn all his energy toward the young men and women coming to him in his Bowery loft. He wrote to Smriti Morarji, "I am now trying to incorporate one corporation of the local friends and admirers under the name of International Society for Krishna Consciousness Incorporated." Of all his friends and admirers, Prabhupada gave his roommate David Allen the most personal attention and training. He felt he was giving David a special chance to become America's first genuine Vaishnava. Prabhupada would eventually return to India and he wanted to take David to Vrindavan. He would show him temple worship and train him for future preaching in the West. He had requested Sumati Morarji to provide free passage for David as well as for himself. "You will be pleased to see this American boy. He is coming of a good family and is a sincere soul to this line of culture. There are others also in the class I am holding here, but I wish to take with me only one of them. I am very glad to say," Prabhupada said one evening in his lecture, "that our Mr. David says sometimes, 'Swamiji, I want to increase my spiritual life immediately.'" Prabhupada laughed as he imitated David's urgency. Take patience, I tell him. It will be done, of course. When you have got such desire, God will help you. He is within you. He is simply trying to see how sincere you are. Then he will give you all opportunities to increase your spiritual life." At first, David and the Swami lived together peacefully in the large hall, the Swami working concentratedly on his side of the partition, David ranging throughout the large open space. David, however, continued taking marijuana, LSD and amphetamines, and Prabhupada had no choice but to tolerate it. Several times he told David that drugs and hallucinations would not help his spiritual life, but David would look distracted. He was becoming estranged from the Swami. But Prabhupada had a plan to use the loft as a temple, to transform it into New York's first temple of Radha Krishna, and he wanted David's cooperation. Although the neighborhood was one of the most miserable in the world, Prabhupada talked of bringing deities from Jaipur or Vrindavan and starting temple worship even on the Bowery. He thought David might help. After all, they were roommates. So there could be no question of David's not cooperating. But he would have to give up his bad habits. Prabhupada was trying to help David, but David was too disturbed. He was headed for disaster, and so were Prabhupada's plans for the loft. Sometimes he was not under the influence of a drug. He would pace around the loft. Other times he appeared to be deep in thought. One day, on a dose of LSD, he went completely crazy. As Carl Jurgens put it, he just flipped out and the Swami had to deal with a crazy man. Things had been leading to this. He was a crazy kid who always took too much, but the real madness happened suddenly. Swamiji was working peacefully at his typewriter when David freaked out. David started moaning and pacing around the large open area of the loft. Then he began yelling, howling and running all around. He went back to where the Swami was. Suddenly Prabhupada found himself face to face not with David, nice David, whom he was going to take to India to show the Brahmanas in Vrindavan, but a drugged, wild-eyed stranger, a madman. Prabhupada tried to speak to him, "What is the matter?" But David had nothing to say. There was no particular disagreement, just madness. Start. Discourse. Okay. So, Now we will speak on Srila Prabhupada's Pranama Mantra. Shall we speak in Hindi or English? Okay, so we shall speak in Hindi. Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Itadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha. Sarvapratham Bhagwan Shri Shri Radha Ras Vihari Dev Ji ke Atishaya Kararchit Pad Padmo mein Tat Parikar Shri Lalita Devi Vishakha Devi Prabhriti Ashta Sakhi Gan Evam Shri Ruprati Manjari Ityadi Kinkari Gan Samet Koti Koti Var दैन्यतामयी विज्ञप्तियों को संपादित करते हुए साथ ही साथ कलयुग की इस प्रथम संध्या में निज महावदान्यता के फलस्वरूप इस धराधाम पर प्रकट होकर श्री कृष्ण नाम एवं श्री कृष्ण प्रेम की महावन्या को प्रवाहित करने वाले साक्षात नंद नंदन स्वरूप भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के सुललित पादाम्बुज द्वय में श्री धाम वृंदावन स्थित श्री रूप सनातन आदि षड गोस्वामी पादों सहित अनंतवार नमन करते हुए तथा वर्तमान समय में उसी श्री कृष्ण भावनामृत का पुनः विस्तारित भाव से प्रचार करने वाले जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के भी अर्हणीय पादाम्बुजों में कोटिशः वंदन समर्पित करते हुए साथ ही साथ श्री मंत्र गुरुपाद पद्म एवं अन्यान्य समस्त शिक्षा गुरुपाद पद्मों के चरणार विंदों में भी अनेक बार नमन करते हुए उपस्थित वैष्णव श्रोता समुदाय का भी यथा योग्य अभिनंदन सत्कार करते हुए आज के इस अतिशय पावन प्रातःकालीन वेला में हम क्रमशः श्रील प्रभुपाद जी के प्रणति मंत्र की विवेचना की ओर तथा उसके रसास्वादन की ओर अग्रसर होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी का यह जो प्रणाम मंत्र है वास्तव में हमारे श्री ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में प्रणाम मंत्र की संरचना की जो परिपाटी है वह यद्यपि श्री रूप सनातन इत्यादि गोस्वामियों के समय से ही चलती आ रही है परंतु तथापि आधुनिक युग में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के जो अति घनिष्ठ प्रिय एवं विद्वत शिष्य थे श्री अनंत वासुदेव प्रभु श्री सुंदरानंद विद्या विनोद इत्यादि उनके द्वारा सर्वप्रथम जिस रूप में इस समय हम प्रणाम मंत्रों को देख रहे हैं वे प्रणाम मंत्र श्रील प्रभुपाद जी के प्रति हों या वे प्रणाम मंत्र श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के प्रति हों जिस रूप में प्रणाम मंत्रों को हम वर्तमान काल में देख रहे हैं उस ढांचे का निर्माण भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के दो शिष्यों ने अनंत वासुदेव एवं सुंदरानंद प्रभु ने किया था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का जो प्रणाम मंत्र है नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने इसी ढांचे का अनुसरण करते हुए प्रायः उनके पश्चात जो परवर्ती गुरु परंपरा है श्री सरस्वती ठाकुर के पश्चात जो अधस्तन यानी परवर्ती गुरु परंपरा है उन परंपरा में आने वाले आचार्यों का भी प्रणाम मंत्र उसी ढांचे के अनुसार निर्मित पाया जाता है। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र का हम सर्वप्रथम सामूहिक रूप से उच्चारण करेंगे और तत्पश्चात उसकी व्याख्या होगी। नमः ओम विष्णुपादाय नमः ओम कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Namaha Om Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine. Hum उन श्री भक्ति वेदांत स्वामी नाम वाले श्रील प्रभुपाद जी के चरणारविंदों में वंदन करते हैं, जो कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अतीव प्रेष्ठ हैं, अतीव प्रिय हैं। नमः ओम विष्णुपादाय। और जो भगवान के सदैव चरणाश्रित होकर अवस्थान करते हैं, यानी जो निरंतर भगवत चरणारविंदों के आश्रित होकर अवस्थान करते हैं, उनको विष्णुपादाय कहा गया। और कृष्ण पृष्ठाय का तात्पर्य भगवान के अति प्रियतम होने के कारण, भगवान के अत्यंत वल्लभ होने के कारण, भगवान के अत्यंत प्रेमास्पद होने के कारण उनको यहाँ पर कृष्ण पृष्ठ कहा गया है। और ऐसे जो श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी हैं, वो इस धराधाम पर, इस भूतल पर, इस अवनीतल पर कृपा पूर्वक प्रकट हुए हैं हम जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। ये तो प्रथम श्लोक का अनुवाद मात्र है। द्वितीय श्लोक का अनुवाद, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हम उन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी के अति प्रिय शिष्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को नमस्कार करते हैं, जो कि गौरवाणी का प्रचार कर रहे हैं, गौरवाणी प्रचारिणे। और जिन्होंने उस गौरवाणी का प्रचार करते समय गौरवाणी को ही सार्थक बनाया। कहने का तात्पर्य ये कि श्री चैतन्य देव ने जो चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत इत्यादि ग्रंथों में यह भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वीते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। इस पृथ्वी पर, इस भूमंडल पर जितने भी राष्ट्र हैं, देश हैं, जितने भी ग्राम हैं, जनपद हैं, प्रांत हैं, उन समस्त भूमंडल के कोने कोने में मेरे नाम का तथा मेरे द्वारा प्रतिपादित ये जो भक्ति मार्ग का सिद्धांत है, इसका प्रचार होगा। सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। इस प्रकार से श्री चैतन्य देव के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई, उस भविष्यवाणी को श्रील प्रभुपाद जी ने गौरवाणी के प्रचार द्वारा, श्री चैतन्य देव के उपदेशों का, शिक्षाओं के प्रचार के द्वारा उसको सार्थक बनाया। गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। और श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीमन महाप्रभु के उपदेशों का प्रचार प्रसार करने पर क्या परिणाम प्राप्त हुआ, क्या फल प्राप्त हुआ? तो कहते हैं कि जो पाश्चात्य जगत, पश्चिम के जो जगत निर्विशेषवाद एवं शून्यवाद से ग्रस्त थे, आक्रांत थे, प्रभावित थे, उन निर्विशेषवाद एवं शून्यवाद से ग्रस्त देशों को उन कुसिद्धांतों से, अपसिद्धांतों से, नास्तिक विचारधाराओं से उन्होंने मुक्त करवाया। तो ये तो जो है दो श्लोकों का यहां पर साधारण अनुवाद प्रस्तुत किया गया। अब इनकी विस्तारित भाव से पूर्व आचार्यों का अनुगमन करते हुए और श्री ब्रह्म माध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के जितने भी ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के आधार पर श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, वेद वेदांत उपनिषद आदियों के आधार पर इन दो श्लोकों की व्याख्या करने का यह पतिताधम कुछ प्रयास करेगा। तो यहां पर सर्वप्रथम जो प्रथम मंत्र है, नमः ओम विष्णुपादाय, उसमें श्रील प्रभुपाद जी को नमस्कार किया गया है। नमः पद नमस्कार की सूचना प्रदान करता है। तो नमः का यहां पर क्या तात्पर्य माना जाना चाहिए, यहां पर नमस्कार क्यों किया जा रहा है? क्योंकि साक्षात जो कठोपनिषद है और श्वेताश्वतर उपनिषद है उसमें साक्षात भाव से यह कहा गया कि यस्य देवे परा भक्ति ही यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थः प्रकाशन्ते महात्मनः। यस्य देवे परा भक्ति ही, भगवान वासुदेव के पादार विंदों में जिस प्रकार की निष्काम अहैतु की अप्रतिहत स्वरूपा भक्ति प्रदर्शित होती है अथवा संपन्न की जाती है भक्त साधक के द्वारा, तो ठीक उसी प्रकार की पराभक्ति का श्री गुरु चरणार विंदों में होना वास्तव में भक्ति मार्ग का साफल्य प्रमाणित करता है, सिद्ध करता है। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ, भक्ति मार्ग में साफल्य की सूचना, सक्सेसफुलनेस, साफल्य की सूचना तब प्राप्त होती है जब जिस प्रकार की पराभक्ति श्री भगवत चरणारविंदों में है ठीक उसी प्रकार की पराभक्ति श्री गुरुदेव के चरणारविंदों में पादाम्बुजों में हो, तब जो है भक्ति मार्ग में सफलता प्राप्त हो सकती है। इसीलिए तो वहां पर मध्यम अधिकारी के लक्षणों का वर्णन करते समय अथवा जो मध्यम भागवत है, मध्यम भागवत के लक्षण का वर्णन करते समय भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं भागवत के 11वें स्कंद में कि ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति समध्यमः। जो मध्यम भागवत होता है वह ईश्वर में प्रेम रखता है तथा ईश्वर के अधीनस्थ जो अन्यान्य महाभागवत गण है, अन्यान्य जो वैष्णव अथवा सात्वत समुदाय है, उनके प्रति वह गाढ़ मैत्री पूर्ण व्यवहार स्थापित करता है। और उस गाढ़ मैत्री पूर्ण व्यवहार को पुनः 6 भागों में विभक्त किया गया उपदेशामृत के 3rd श्लोक में श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। वहां पर यह कहा गया कि ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीति लक्षणम्। ये छह प्रकार की जो प्रीतियां हैं जिसको हम षड्विधा प्रीति कहते हैं, जैसे वहां पर तो शरणागति के 6 प्रकार बताए गए विष्णु स्मृति में, जो कि हरिभक्ति विलास में भी उद्धृत किया गया है यह प्रमाण। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् रक्षित्यतीति विश्वासो गुप्तृत्वे वर्णनम् तथा आत्मनिक्षेपकार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः। श्री गीता शास्त्र के अंत में सर्वधर्मान् परित्यज्य मन मनाभव इत्यादि श्लोकों के द्वारा जिस शरणागति का श्री भगवान ने निर्देश दिया, उसी शरणागति के 6 प्रकार हमारे हरिभक्ति विलास इत्यादि ग्रंथों में प्रदर्शित किए गए। तथैव ठीक उसी प्रकार से मध्यम भागवत जो भगवान के परम प्रिय भक्त हैं उनके प्रति भी 6 प्रकार का व्यवहार रखता है, 6 प्रकार की जो शरणागति है उसी प्रकार से भक्तों के साथ भी षड्विध प्रीतिपूर्ण व्यवहार रखा जाता है, 6 प्रकार का प्रेम पूर्वक व्यवहार रखा जाता है जिसको मैत्रीपूर्ण व्यवहार कहा गया। ददाति प्रतिगृहणाति इत्यादि के द्वारा उसका संकेत प्राप्त हुआ। तो ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च, ईश्वर में तो उसका अनन्य प्रेम होता है, किसका? मध्यम भागवत का। क्यों? क्योंकि पद्म पुराण में कहा गया ना कि अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भक्तिरित्युच्यते भीष्म प्रहलादोद्धव नारदैः। अनन्य ममता विष्णु, भगवान विष्णु के चरणाम्बुजों में अनन्य ममत्व का होना, अनन्य ममत्व का तात्पर्य यहां पर यह है कि अन्य किसी भी देह गेह इत्यादि पदार्थों में अहंता और ममता का न होना। देह गेह पुत्र वित्त कलत्र आदि जो पदार्थ हैं इस शरीर से संबंध रखने वाले, उन समस्त पदार्थों में अहंता का, आई एंड माइंड, अहंता और ममता का न होना, इसको जो है, और केवल भगवान के प्रति ममता का होना, केवल भगवान के प्रति ममता का होना, अन्य किसी भी पदार्थ में अनन्या ममता और अहंता का अभाव, इसको यहां पर अनन्य ममता कहेंगे। तो इस प्रकार की जो अनन्य ममता है वह यदि भगवत पादारविंदों में है, अनन्य ममता विष्णु, ममता प्रेम संगता, और उस ममत्व के साथ साथ प्रेम मिला हुआ है, यानी आनुकूल्य भाव मिला हुआ है, भगवान के प्रति आनुकूल्य भाव मिला हुआ है, क्योंकि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो आनुकूल्य भाव से संपन्न किया गया कायिक वाचिक एवं मानसिक तीन प्रकार का जो भगवत अनुशीलन है, कृष्णानुशीलन है, उसी को तो उत्तमा भक्ति स्वीकार किया गया ना भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। इसीलिए आनुकूल्य भाव से अनन्य ममता युक्त होकर श्री भगवान के चरणारविंदों के प्रति जो श्रवण कीर्तन स्मरण आदि नवविधा भक्ति प्रदर्शित की जाती है भक्त साधक के द्वारा, उसी को यहां पर शुद्ध भक्ति कहेंगे। और शुद्ध भक्ति की यह परिभाषा भीष्म प्रहलाद उद्धव नारद इत्यादि जो महाजन हैं, इत्यादि जो भक्ति मार्ग के आचार्य हैं, उनके द्वारा स्वीकार की गई। भक्ति रित्युच्यते भीष्म प्रहलाद उद्धव नारदई है, इस प्रकार से पद्म पुराण ने कहा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मध्यम भागवत के प्रति भगवान ने मध्यम भागवत के लक्षणों का वर्णन करते हुए कहा कि जो मध्यम भागवत होता है उसका ईश्वर के प्रति यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसका अनन्य प्रेम होता है। इसीलिए ईश्वरे प्रेम तद अधीनेशु मैत्री बालिशेषु कृपा एवं द्विशत सूच उपेक्षा। कॉरस्पॉन्डिंग श्लोक का प्रथम चरण श्लोक के द्वितीय चरण के साथ कॉरस्पॉन्डिंग है। ईश्वरे तद अधीनेशु बालिशेषु द्विशत सूच प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति समध्यमः। जिसका ईश्वर के पादार बिंदों में अनन्य प्रेम है और ईश्वर के अधीनस्थ जो महाभागवत गण हैं, उन महाभागवत समुदाय के प्रति जो छह प्रकार का प्रीति पूर्वक व्यवहार रखता है ददाति प्रतिग्रहणाति के द्वारा सूचित होने वाला, तथा बालिशेषु जो विषयी संसारी भगवत बहिर्मुख भगवत विमुख जो जीव है, उन भगवत बहिर्मुख मायाबद्ध जीवों के प्रति यदि वे मायाबद्ध जीव असूया रहित है, ईर्ष्या रहित है, द्वेष रहित है, मात्सर्य रहित है, किनके प्रति? कदाचित अन्य जीवों के प्रति उनका मात्सर्य हो तो वो तो स्वाभाविक है। मायाबद्ध जीव का अन्य जीवों के प्रति, अन्य चित कणों के प्रति यदि मात्सर्य हो तो वो तो स्वाभाविक है उनके लिए। परंतु यदि उन अज्ञानी बद्ध जीवों का हृदय भगवान, भगवान के भक्त और भक्ति का मार्ग, इन तीनों के प्रति यदि मात्सर्य से रहित है, तब उन अज्ञानी परंतु बालक के समान निष्कपट बालिशेषु, अज्ञानी विषयी संसारी मायाबद्ध परंतु बालक के समान निष्कपट, ऐसे उन जीवों के प्रति जो मध्यम भागवत है वह कृपा पूर्वक उनको भक्ति के मार्ग में खींच कर ले आता है और उनका वर्तम प्रदर्शक गुरु बनता है, पथ प्रदर्शक गुरु बनता है। भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी प्रभुपाद ने चार प्रकार के गुरु बताए, वर्तम प्रदर्शक गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और भजन गुरु। तो इस प्रकार से जो मध्यम भागवत है वो अज्ञानियों अज्ञानी जीवों के प्रति कृपा करता है, लेकिन यदि वो कृष्ण बहिर्मुख जीव भगवान भगवान के भक्त के प्रति ईर्ष्या द्वेष युक्त अंतःकरण वाला है तो फिर इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम योभ्यसूयति। असूया से युक्त अंतःकरण वाले व्यक्ति के प्रति वो कृपा नहीं करेगा, उसके प्रति वह उपेक्षा यानी उदासीनता का बर्ताव करेगा। द्विषत सूच उपेक्षा, द्वेषियों के प्रति वह उदासीनता का बर्ताव करेगा। तो इस प्रकार से मध्यम भागवत के संबंध में ये जो चार प्रकार का भेदपूर्ण व्यवहार, बायस बिहेवियर, प्रिजुडाइसल, ये जो चार प्रकार का भेदभाव पूर्ण पक्षपात पूर्ण जो व्यवहार शास्त्र के द्वारा प्रमाणित किया गया, तो अभी हम देखेंगे कि ईश्वर के प्रति तो प्रेम की बात की गई परंतु ईश्वर के आश्रित जो उनके भक्त हैं भगवान के, उनके प्रति मैत्री की बात की गई।
परंतु यहां पर जो श्वेताश्वत उपनिषद कहता है कि यस्य देवे परा भक्ति ही यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः, कि जिस प्रकार की पराभक्ति यानी जिस प्रकार की अनन्य ममता भगवान वासुदेव के प्रति हो, ठीक उसी प्रकार की, उससे किंचित न्यून मात्रा में नहीं, ठीक उसी प्रकार की उतने ही परिमाण में, उतनी ही मात्रा में पराभक्ति का श्री गुरु पादारविंदों में होना आवश्यक है। तो अब प्रश्न उठता है कि भगवान के प्रति प्रेम की बात कही गई मध्यम भागवत के पक्ष में और भगवान के भक्तों के प्रति मैत्री की बात कही गई, यानी मैत्री और प्रेम इसमें थोड़ा भेद है, मैत्री और प्रेम इसमें थोड़ा भेद है। तो गुरु के प्रति हमें प्रेम रखना चाहिए या मैत्री रखनी चाहिए? अन्य वैष्णवों के प्रति तो मैत्री की बात कही गई और वो मैत्री भी कनिष्ठ मध्यम उत्तम इत्यादि के तारतम्य से तीन प्रकार की होगी। कृष्णेत यस्य गिरितं मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञ मनन्य मन्य निंदादि शून्य हृदमीप्सित संगलभ्या। इस उपदेशामृत के वाक्य के आधार पर वो जो वैष्णव के साथ जो छह प्रकार का प्रीतिपूर्ण व्यवहार है वो भी पुनः तीन प्रकार से होगा, इसीलिए कनिष्ठ मध्यम उत्तम के तारतम्य से। तो इस प्रकार से मैत्री रखनी है गुरु के समक्ष या फिर गुरु के समक्ष प्रेम पूर्वक व्यवहार जैसे भगवान के साथ होता है वैसे ही करना है। तो इसी शंका का यहां पर समाधान करते हुए कहा गया कि यस्य देवे पराभक्ति ही यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ति महात्मनः। नहीं, मैत्री नहीं रखनी है, जिस प्रकार का अनन्य प्रेम भगवत पादारविंदों में है उसी प्रकार का अनन्य प्रेम गुरु पादारविंदों में भी रखना होगा। इसीलिए यद्यपि गुरु श्री भगवान के परम भक्त हैं, महाभागवत हैं, भगवत चरणारविंदों के आश्रित होने के कारण, लेकिन तथापि गुरु तत्व को वैष्णव तत्व से पृथक किया गया शास्त्रकारों के द्वारा, आचार्य पादों के द्वारा। अतएव तो श्री चैतन्य चरितामृत में वंदे गुरुन ईश भक्तान ईशम ईशावतारकान तत्प्रकाशांश्च तच्छक्ति ही कृष्ण चैतन्य संज्ञकम्। हम उन गुरुओं के चरणों में नमस्कार करते हैं, तत्पश्चात हम उन भगवत भक्तों के चरणारविंदों में नमस्कार करते हैं। वंदे गुरुन ईश भक्तान, ईश भक्तों को गुरु तत्व से पृथक माना गया। यद्यपि गुरु भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, महाभागवत हैं, लेकिन तथापि भक्त तत्व को गुरु तत्व से पृथक इसी आधार पर किया गया है कि अन्यान्य वैष्णवों के साथ तो केवल मैत्रीपूर्ण व्यवहार होगा, गुरु के साथ तो वैसे ही पराभक्ति होगी जैसे भगवान के साथ है। इसीलिए नमस्कार का यहां पर यह तात्पर्य है। और नमः ओम विष्णुपादाय, और भी बहुत सारे कारण यहां पर दिए जा सकते हैं गुरु के चरणारविंदों में नमस्कार क्यों किया जाता है इसके संदर्भ में। यहां पर नमः का जो प्रयोग है वो बहुत ही रहस्यमय दृष्टि के द्वारा किया गया है, यानी इस नमः पद के प्रयोग में अनेकानेक रहस्य छिपे पड़े हैं, जैसे कि हम धीरे धीरे हमारी विवेचना में देखेंगे। देखिए वहां पर यह कहा गया श्री भक्ति संदर्भ में श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद के द्वारा कि शुद्ध भक्ताः श्री गुरोः श्री शिवस्य च भगवता सह अभेद दृष्टिम तत्प्रियतमत्वे नैव मन्यन्ते। कहने का तात्पर्य यह है कि कई बार शास्त्रों के कई स्थलों पर गुरु तत्व को, भगवान के जो प्रिय भक्त हैं उन वैष्णवों को, तथा जो साक्षात शंकर महादेव हैं उनको श्री भगवान से अभिन्न रूप में प्रतिपादित किया गया। शास्त्रों के कई स्थलों पर, कई स्थानों पर गुरु तत्व को, शंभू तत्व को एवं वैष्णव तत्व को श्री भगवान अर्थात विष्णु तत्व के साथ अभिन्न रूप में प्रतिपादित किया गया कि गुरु ही साक्षात भगवान है, शंभु अथवा जो शंकर है वही साक्षात नारायण है, और इस प्रकार से जो भगवान के भक्त हैं वो साक्षात भगवत स्वरूप ही है। इस प्रकार से कई स्थानों पर शास्त्रों में उल्लेख किया गया। तो उसका समाधान क्या है? तो उसका समाधान देते हुए श्री जीव प्रभु कहते हैं कि भगवता सह तत् प्रियतमत्वे नैव मन्यन्ते अभेद दृष्टिम। श्री भगवान के साथ ये जो अभेद दृष्टि स्थापित की गई है शंभु तत्व की, वैष्णव तत्व की और गुरु तत्व की, वो अभेद दृष्टि उन तत्वों की भगवत प्रियतमत्ता के कारण स्थापित की गई है। यानी कि श्री गुरु भगवान के अत्यधिक प्रिय होने के कारण, श्री गुरु भगवान के अत्यधिक प्रिय होने के कारण जो श्री शंकर हैं, शंभु हैं, वो भगवान के अत्यधिक प्रिय होने के कारण, और ठीक उसी प्रकार से जो वैष्णव हैं, जो महाभागवत हैं, वो भी भगवान के अति प्रिय होने के कारण भगवान का उनके साथ अभेद स्थापित किया गया। जैसे यहां पर श्रीमद् भागवत में भगवान कहेंगे ना उद्धव के प्रति लक्ष्य करके 11वें स्कंद में गुरु तत्व का उल्लेख करते समय कि आचार्यम माम विजानीयात नावमन्येत कर्हिचित। तो आचार्यम माम विजानीयात नावमन्येत कर्हिचित, सर्वदेव मयो गुरु, इस आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानो। यानी मुझसे रंच मात्र भी ये जो आचार्य तत्व है वो पृथक नहीं है। तो यहां पर ऐसा लगता है जैसे मायावादियों का जो अद्वैतवाद है, एब्सोल्यूट मोनिज्म, उसको कदाचित एडवोकेट किया जा रहा है, उसको कदाचित जो है यहां पर प्रतिपादित किया जा रहा है। नहीं, जो गुरु तत्व है वो यद्यपि जीव है, तो फिर यदि जीव है और यदि अंश अंशी का भेद है, यदि जीव भगवान का विभिन्न अंश है, स्वांश नहीं है, तो फिर भगवान इस प्रकार से ये क्यों कह रहे हैं कि जो आचार्य है वो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि भगवान को अपनी जो आत्मा है वो भी उतनी प्रिय नहीं है कि जितनी उनको उनके भक्त प्रिय है। इसका प्रमाण वहां पर श्रीमद् भागवत में मिला ना, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में कि न तथा मे प्रियतमः आत्मयोनिर्न शंकरः न च संकर्षणो न श्रीः नैवात्मा च यथा भवान। भगवान ने उद्धव के प्रति लक्ष्य करके कहा कि हे उद्धव, आप मुझे कितने प्रिय हैं, मैं जरा आपको आज खुलकर बताता हूं, मैं आपको आज खुलकर बताता हूं कि आप मुझे कितने प्रिय हैं। मुझे जितने प्रिय आत्मयोनि स्वयंभू ब्रह्मा जी नहीं है, जितने प्रिय मुझे शंकर नहीं है, जितने प्रिय मुझे अपने भ्राता संकर्षण स्वरूप बलराम नहीं है, जितनी प्रिय मुझे अपनी निज अर्धांगिनी तथा चरण सेविका लक्ष्मी अथवा रमा नहीं है, और तो और मुझे जितना प्रिय अपना निज आत्मा यानी अपना निज स्वरूप नहीं है, उतने प्रिय हे उद्धव आप हैं। श्रीर नैवात्मा च यथा भवान। तो ये उद्धव जो है भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, उनकी प्रियता को भगवान अपने निज आत्मा की प्रियता से भी अधिक मानते हैं। यानी भगवान को उनका जो अपना आत्मा है, उनको जो अपना स्वरूप है, वो भी उतना प्रिय नहीं है कि जितने उद्धव जी उनके परम प्रिय भक्त उनको प्रिय हैं। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में भी ये कहा गया श्री भगवान के द्वारा कि नोद्धवोऽण्वपि मन्योनो यद् गुणैर्नार्दितः प्रभुः अतो मद्वयुनम् लोकम् ग्राह्यन्निह तिष्ठतु। ये कहा गया कि जो उद्धव है वो मुझसे अणु मात्र भी कम नहीं है किसी भी प्रकार से। ये भगवान ने कहा नोद्धवोऽण्वपि मन्योनो, उद्धव जी मुझसे अणु मात्र भी कम नहीं है। इसलिए भगवान ने उद्धव जी को अपना समकक्ष माना, और पहले वाले श्लोक में न तथा मे प्रियतमः आत्मयोनिर्न शंकरः न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान, उसमें तो भगवान ने उद्धव जी को अपने आत्म तत्व से भी अधिक प्रिय माना, अपने निज स्वरूप से भी अधिक प्रिय माना। तो इसीलिए शुद्ध भक्त जो होते हैं, वैसे आदि पुराण में भी यह कहा गया कृष्ण और अर्जुन के संवाद में भगवान ने अर्जुन को क्या कहा कि न तथा मे प्रियतमः ब्रह्मा रुद्रश्च पार्थिव न च लक्ष्मीर न चात्मा च यथा गोपी जनो मम। हे अर्जुन, मुझे जितने प्रियतम ब्रह्मा नहीं है, रुद्र अर्थात शंकर महादेव नहीं है, लक्ष्मी मुझे जितनी प्रिया नहीं है, तथा चात्मा च, यहां पर भी उसी बात को दोहराया जा रहा है, जो उद्धव जी के पक्ष में बात दोहराई जा रही थी उसी बात को यहां पर भी दोहराया जा रहा है, उसकी पुनः उक्ति हो रही है। न च लक्ष्मीर न चात्मा च, मुझे लक्ष्मी और तो और मुझे अपनी निज आत्मा निज स्वरूप भी उतना प्रिय नहीं है कि जितनी ये व्रजांगनाएं ये जो व्रज की गोपियां हैं वो मुझे प्रिय है। कहने का तात्पर्य जीव गोस्वामी पाद यही सिद्ध करते हैं यहां पर कि यदि भगवान को उनके भक्त उनकी अपनी आत्मा से भी उनके अपने निज स्वरूप से भी यदि उनको अधिक प्रिय लगते हैं तो फिर गुरु अथवा भक्तों के लिए ये कहना कि वो तो मेरे स्वरूप से अभिन्न है ये तो वास्तव में एक स्टेप नीचे आना है। अब समझिए इस बात को, ये वास्तव में एक स्टेप नीचे आना है, गुरु को अथवा भक्तों को अपने समकक्ष रखना कि नहीं आचार्य को तो साक्षात मेरा ही स्वरूप मानना चाहिए, यानी भगवान ने अपने निज स्वरूप से उस आचार्य को अभिन्न बताया, परंतु ये तो एक स्टेप नीचे आना है क्योंकि वास्तविक दृष्टि से यदि देखें तो श्री भगवान को उनके भक्त, फिर चाहे वो भक्त आचार्य पद पे कार्यरत हो चाहे आचार्य पद पे कार्यरत न हो, क्योंकि गुरु तत्व भक्त तत्व भी है परंतु भक्त तत्व गुरु तत्व से पृथक भी है, क्योंकि ऐसा आवश्यक नहीं है कि जो भक्त है वो गुरु का अथवा आचार्य का कार्य कर रहा हो। इसीलिए तो भगवान जब ये कहते हैं कि आचार्य को साक्षात मेरा स्वरूप जानो, तो ये तो वास्तव में आचार्य की जो महिमा है उसको थोड़ा निम्न करना है, उसमें वास्तविक उत्कर्ष नहीं है। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये कहते हैं श्रीमद् चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के तीसरे अध्याय में कि केह कहे श्री कृष्ण क्षीरोदक्षाई विष्णुर अवतार। कोई ऐसा कहते हैं कि श्री कृष्ण तो क्षीरोदक्षाई विष्णु के अंश है, कोई ऐसा मानते हैं कि श्री कृष्ण तो वामन के कूर्म के नरसिंह के इत्यादि के अंश है, कोई ऐसा कहते हैं कि श्री कृष्ण तो वो जो नर नारायण में जो नारायण है ना उनके अंश है। तो कृष्णदास कविराज जी ने कहा कि इन सभी की बातें सत्य हैं, क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं वो जो कुछ भी कहते हैं जो कुछ भी मानते हैं वो सत्य होता है। वामन का भक्त ये मानेगा कि श्री कृष्ण वामन के अंश है, नरसिंह का राघवेंद्र का भक्त ये मानेगा कि श्री यादवेंद्र कृष्ण राघवेंद्र के अंश है। तो इसीलिए भक्त जो कुछ भी माने एक दृष्टि से वो सत्य है, परंतु वास्तविकता तो यह है कि एते चांच कलाह पुंसह कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वास्तविकता तो यह है कि रामादि मूर्ति शुकला नियमेन तिष्ठन नाना अवतार मकरोत भुवनेशु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। और देखिए उसी प्रकार से यहां पर गुरु को भगवान अपने निज स्वरूप से अभिन्न मान रहे हैं, अपने समकक्ष स्थापित कर रहे हैं गुरु के पद को, लेकिन वास्तव में गुरु का पद तो उनसे भी अधिक महिमा वाला है। इसको भी हम बाद में देखेंगे आगे चलकर, तो यहां पर संभव प्रमाण के द्वारा देखिए भगवान जो ये कह रहे हैं कि हे उद्धव गुरु को मेरा ही स्वरूप मानो या जानो, आचार्य साक्षात मेरा ही स्वरूप है, संभव प्रमाण के द्वारा जो भगवान कह रहे हैं वो गलत नहीं है। दस प्रकार के प्रमाण जो है श्री बलदेव विद्याभूषण और जीव गोस्वामी स्वामी पाद इत्यादि जो दार्शनिक धुरंधर आचार्य हैं हमारे संप्रदाय के, उन्होंने 10 प्रकार के प्रमाणों को स्वीकार किया, 10 टाइप्स ऑफ एविडेंसेस। उसमें शब्द है, शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, अर्थापत्ति, संभव, अभाव, ऐतिह्य, चेष्टा इत्यादि। 10 प्रमाणानि विदितानि सर्वसंवादिनी में लिखा जीव प्रभु ने। तो संभव प्रमाण किसको कहेंगे? The evidence of possibility, संभव प्रमाण किसको कहेंगे? संभव प्रमाण उसको कहेंगे, उदाहरण स्वरूप बताया गया कि जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, आपके पास 100 रुपये आपके गजबे में पड़े हुए हैं। तो यदि आप ऐसा कहते हैं कि मेरे पास 50 रुपये हैं, तो एक दृष्टि से तो आप जो कह रहे हैं वो मिथ्या है, आप मिथ्या भाषण कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास 100 रुपये हैं परंतु आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास 50 रुपये है। परंतु आप सूक्ष्म दृष्टि से विचार कीजिए, क्या 50 रुपये 100 रुपये के अंदर नहीं है? यानी उस व्यक्ति के पास 100 रुपये तो है परंतु क्या 50 रुपये नहीं है? ऐसा है? यदि ऐसा कहते हैं कि 50 रुपये नहीं है तो भी मामला गड़बड़ा जाएगा, मामला इसीलिए गड़बड़ा जाएगा क्योंकि 100 की जो संख्या है वो बिना 50 के बन ही नहीं सकती। इसलिए 100 के अंदर 50 जब होगा तभी तो वो 100 बनेगा ना। इसलिए ये कहना कि मेरे पास 50 रुपये है एक दृष्टि से सत्य भी है, मिथ्या भाषण नहीं है। इसलिए इस संभव प्रमाण के द्वारा अधिक संख्या में कम संख्या का निवेश स्वतः सिद्ध है अनुमान के द्वारा, लॉजिक के आधार पर, इन्फरेंस के आधार पर। अधिक संख्या में न्यून संख्या का समावेश स्वाभाविक है। उसी प्रकार से यदि यहां पर हम ये मानते हैं कि भगवान ने अपने भक्तों को अपने निज आत्म तत्व से, अपने निज स्वरूप से भी अधिक माना है, यानी भगवान का जो स्वरूप है वो 50 की संख्या के तुल्य है, भगवान का जो निज आत्मा है, जो निज स्वरूप है वो 50 की संख्या के तुल्य है, और जो भगवान ये कह रहे हैं कि मुझे अपनी आत्मा से भी भक्त अधिक प्रिय है, तो भक्त जो है 100 की संख्या के तुल्य है। भक्तों का जो प्रियतमत्व है भगवान के दृष्टिकोण में वो 100 की संख्या के तुल्य है, और भगवान का जो अपना स्वरूप है निज आत्मा वो 50 की संख्या के तुल्य है। तो यदि भगवान ये कहते हैं कि मेरे भक्त साक्षात मेरे ही स्वरूप हैं, तो ये संभव प्रमाण के द्वारा ये भी गलत नहीं है। अधिक है, वैसे तो भगवान के स्वरूप से भी उनकी महिमा अधिक है, लेकिन कम का अधिक में समावेश होने के कारण संभव प्रमाण के द्वारा यह भी असत्य नहीं है। और सत्यता तो यह है कि गुरु का भक्तों का महात्म्य अधिक ही है। इसीलिए तो वहां पर पद्म पुराण में क्या शिव पार्वती के संवाद में सिद्धांत स्थापित किया गया, महेश्वर माहेश्वरी को क्या कह रहे हैं, आराधनानां सर्वेषां विष्णोराराधनं परम तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम्। समस्त प्रकार के ब्रह्म, रुद्र, इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य, यम इत्यादि जितने भी प्रकार के देवी देवता पाए जाते हैं, उन समस्त देवी देवताओं की आराधना से भगवान ऋषिकेश की जो समाराधना है, उनकी जो समर्चना है, उनकी जो उपासना है, उनका जो भजन है, वो अतीव श्रेष्ठ है, उन सभी से उत्कृष्ट माना गया। इसलिए तो एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्रमेव। परंतु उन भगवान की आराधना से भी श्रेष्ठ, उन भगवान से संबंध रखने वाले तत्पदार्थ स्वरूप जो भगवान है, उस तत्पदार्थ स्वरूप भगवान से संबंध रखने वाले जो तदीय हैं अथवा भगवदीय हैं, यानी उनके भक्त, उन भगवदीय भक्तों की आराधना भगवद आराधना से भी उत्कृष्ट मानी गई साक्षात शंकर के द्वारा। इसलिए भक्तों का जो स्थान है वो श्री भगवान से उत्कृष्ट सिद्ध हुआ। और तो और वहां पर श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में उद्धव जी के प्रति लक्ष्य करते हुए भगवान ने पुनः एक वाक्य कहा कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यंघ्रिरेणुभिः। भगवान ने क्या कहा कि निरपेक्षम मुनिम शांतम, मेरा जो भक्त समस्त प्रकार की अपेक्षाओं से रहित है। समस्त प्रकार की अपेक्षाओं का तात्पर्य यहां पर किस चीज से है, समस्त प्रकार की अपेक्षाओं का तात्पर्य यहां पर किस चीज से है, भुक्ति मुक्ति की स्पृहा रूपिणी पिशाची से है। इसलिए भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत। भोग मोक्ष की वासना रूपिणी जो पिशाचिनी है, उस पिशाचिनी की अपेक्षा से जो मुक्त हो चुका है अर्थात निरपेक्ष बन चुका है। इसलिए तो कहा गया ना कि नारायण प्रशांत आत्मा कोटिश्वपि महामुने मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायणः। समस्त प्रकार के मुमुक्षुओं, समस्त प्रकार के जो मुक्त हैं, जीवन मुक्त हैं, उन जीवन मुक्तों में से, ऐसे लाखों करोड़ों जीवन मुक्तों में से कोई एक कदाचित विरला ऐसा होगा जो कि भगवान का शुद्ध भक्त हो और शुद्ध भक्ति के कारण जिसका चित्त प्रशांत हो गया हो। देखिए कर्मी का जो चित्त है वो अशांत है भोग की वासना के आधिक्य के कारण, उसके अंतःकरण में भोग वासना के आधिक्य के कारण। और जो ज्ञानी है अथवा जो मुमुक्षु है, मोक्ष की इच्छा वाला, अथवा जो मुक्त हो चुका है, उस मुक्त व्यक्ति का भी अंतःकरण, अब देखिए मुमुक्षु का अंतःकरण भी अशांत है, मुमुक्षु और मुक्त में थोड़ा पार्थक्य है। मुमुक्षु का तात्पर्य जो अभी मुक्त नहीं हुआ परंतु मुक्ति की इच्छा जिसमें विद्यमान है, और मुक्त का तात्पर्य जो मुक्त हो चुका है उससे। तो मुमुक्षु का चित्त भी बुभुक्षु की तरह अशांत है। बुभुक्षु यानी भोगवादी, कर्मी, विषयी, संसारी, भोगी, जो कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि पंच विषयों का भोग करता है इस संसार में, कर्तृत्वाभिमान और भोक्तृत्वाभिमान के कारण। वो जो कर्मी है, वो कर्मी भुक्ति की इच्छा से आक्रांत होने पर, भोग की वासना से आक्रांत होने के कारण उसका चित्त भी ययाति और पुरुरवाह की तरह अशांत ही रहेगा, ययाति और पुरुरवाह की तरह। और जो ज्ञानी है वह मुक्ति की इच्छा से प्रेरित होने के कारण, मुमुक्षु होने के कारण, जब तक उसको सायुज्य इत्यादि मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती वो भी व्यथित ही रहेगा। परंतु मुक्त हो जाने के पश्चात भी वो प्रशांत नहीं कहा जा सकता। जो मुक्ति की कामना जिसके अंदर है, वो ब्रह्म ज्ञानी यदि मुक्त भी हो जाए, ब्रह्म सायुज्य उसे प्राप्त भी हो जाए, तो ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति के पश्चात भी, मुक्त होने के पश्चात भी उसको प्रशांत नहीं कहेंगे। प्रशांत केवल नारायण परायण निष्काम भक्त को ही कहेंगे। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिश्वपि महामुने। ऐसे करोड़ों मुक्तों में भी नारायण परायण निष्काम जो है बड़ा दुर्लभ है मिलना, छठवें स्कंद में ये कहा गया। ऐसा इसीलिए क्योंकि मुक्ति मिल जाने के पश्चात भी निर्विशेष ब्रह्मानंद में वैचित्री का अभाव होने के कारण, इट्स डिवॉइड ऑफ वेराइटेडनेस, द पैरामाउंट ब्लिस विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय मर्जिंग इनटू द इम्पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ द एब्सोल्यूट इज डिवॉइड ऑफ वेराइटेडनेस, इज डिवॉइड ऑफ मल्टीफेरियस नेचर, विचित्रता से रहित होने के कारण। और जीवात्मा का स्वरूप क्या है? सदैव वैचित्र्य के पीछे परिधावन करता रहता है, वैचित्र्य के पीछे जीव परिधावन करता रहता है। यदि आनंद भी ऐसा मिले कि जिसमें वैचित्र्य न हो, तो उस आनंद में भी जीव अधिक समय तक टिक नहीं सकता। इसलिए निर्विशेष ब्रह्म सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाने के पश्चात भी उस मुक्ति में वैचित्र्य का अभाव होने के कारण वहां पर भी वो प्रशांत नहीं है। प्रशांत एकमात्र भगवत चरणारविंदो से जो सुख प्राप्त होता है। इसलिए तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी प्रभु ने क्या कहा कि श्री कृष्ण चरणाम भोज सेवा निर्वृत्त चेतसाम एषाम मोक्षाय भक्तानाम न कदापि स्पृहा भवेत्। जो श्री कृष्ण के पादारविंदों के द्वारा मिश्रित होने वाला जो मकरंद रस है, उस मकरंद रस के जो मधुप यानी मधुकर बने हुए हैं, भ्रमर बने हुए हैं, श्री कृष्ण के पादारविंदों से विनिसृत होने वाला, विनिर्गत होने वाला, बहिर्गत होने वाला जो पीयूष है, जो मकरंद रस है, उस मकरंद रस के पान के लंपट जो मधुकर भौरे के समान श्री भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, उन भक्तों को सेवा जनित आनंद में ही वो इतने मग्न हो जाते हैं कि उनको पंच प्रकार की जो मुक्तियां हैं, सालोक्य, सारष्टि इत्यादि, उनके प्रति स्पृहा ही नहीं रहती। एषाम मोक्षाय भक्तानाम न कदापि स्पृहा भवेत। और भक्ति को सुदुर्लभा कहा गया ना भक्ति रसामृत सिंधु में। सुदुर्लभा का तात्पर्य क्या है? क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षिणी चसा। सुदुर्लभा का तात्पर्य यह है कि उस भक्ति के प्राप्त हो जाने के पश्चात जो भक्त है उसके समक्ष धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि जो तथा कथित चार पुरुषार्थ है, वो तृण के समान उसको लगने लगते हैं। पथ पर पड़ा हुआ, मार्ग पर निक्षिप्त जो तिनका होता है, जिसको रौंद के सभी आगे बढ़ते हैं, जिसका अतिक्रमण करके, उल्लंघन करके सभी गाय, गधे, बैल आदि भी आगे बढ़ते हैं, उस तिनके के समान जो है, हे तुच्छ निकृष्ट धर्म, अर्थ, काम, मोक्षादि को भक्त मानेगा। केवल थियोरेटिकली नहीं, केवल दार्शनिक रूप से नहीं, केवल शास्त्र में लिखा है इसलिए नहीं, परंतु अनुभव के द्वारा वो मान लेगा इस बात को कि हाँ ये बात सत्य है। तो कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि इस प्रकार की जो निष्काम भक्ति है, हमारा मूल विषय यहां पर क्या चल रहा था? नहीं, नमः तो ठीक है, लेकिन अभी थोड़े ही समय पहले, हाँ, No, no, even before that, little before that. Yes, yes, the position of devotees is superior to the position of the personality of Godhead himself.
तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयये त्यंघ्रि रेणुभिः। श्री भगवान कह रहे हैं 11वें स्कंद में उद्धव को कि जो मेरा निरपेक्ष भक्त है, निरपेक्ष का तात्पर्य भोग मोक्ष रूपी स्पृहाओं से मुक्त, पूर्ण रूप से प्रशांत, जो केवल मेरे सुख में सुखी रहता है, उस निरपेक्ष भक्त जो कि मुनि है, मुनि का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने यहां पर अनुवाद में किया है, हु इज टोटली wrapped in thinking about the pastimes of their lordships Shri Shri Radha and Krishna. Jo Bhagavan ka bhakt purnataya tallin hai Shri Bhagavan lilaon ka smaran manan tatha uske nididhyasan mein, usko yahan par muni kahenge. तो ऐसा जो भगवत चरणार विंदों के स्मरण के प्रति आसक्त जो उनका भक्त है, जो कि क्षण मात्र के लिए भी भगवान को भूलता नहीं है, क्योंकि स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य नो जातुचित सर्वे विधि निषेधाः स्युः एतयोरेव किंकराः। इस कारण से जो, और यदि मान लीजिए क्षण मात्र के लिए भगवान को भूल भी जाए, तो तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति। नारद जी ने क्या कहा भक्ति सूत्र में, यदि क्षण मात्र के लिए भूल भी जाए यदि भक्त भगवान के चरणारविंदों को, तो उस विस्मरण के कारण उसको परम व्याकुलता उसके हृदय में आ जाती है कि अरे ये विस्मरण कैसे हुआ। तो निरपेक्षम मुनिम शांतम, ऐसा जो प्रशांतात्मा भगवान का भक्त है वो निर्वैरम यानी अजात शत्रु होता है, किसी के साथ उसका वैर नहीं है। समदर्शनम तथा सभी में वो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कवि हस्तिनी की भांति सभी में वह उन भगवान की उपस्थिति को देखता है। वो कहा गया ना कि सर्वत्र देखे तार इष्ट देव स्फूर्ति स्थावर जंगम ना देखे तार मूर्ति। उत्तम भागवत का लक्षण करते समय क्या कहा गया चैतन्य चरितामृत में, और भागवत में भी वही बात कही गई कि सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भावमात्मनम भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः 11वें स्कंद में। और उसी का ठीक बांग्ला पद्यानुवाद कविराज गोस्वामी चरितामृत में कर रहे हैं कि स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र उसको जो है इष्टदेव की स्फूर्ति, सर्वत्र होइबे तार इष्टदेव स्फूर्ति, हाँ सर्वत्र उसको जो है अपने प्रभु का ही स्मरण अथवा दर्शन होता है। यही तो प्रहलाद महाराज के उसमें घटित हुआ ना कि खंबे में भी जो है भगवान की उपस्थिति उनको साक्षात दिखाई दी। तो इस प्रकार से जो भगवान का भक्त है, भगवान क्या कहते हैं कि अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयये त्यंघ्रि रेणुभिः, ऐसे मेरे शुद्ध निष्काम प्रेमी भक्त के पीछे पीछे मैं गमन करता हूं। यानी प्रेमी भक्त जो है आगे आगे चलता है, उस प्रेमी भक्त को ये पता नहीं है, उसको ये मालूम नहीं है कि मैं पीछे से उसका अनुवर्तन कर रहा हूं, आई एम फॉलोइंग हिम फ्रॉम द बिहाइंड, ये उसको पता नहीं है, क्योंकि मैं अलक्षित भाव से अदृश्य रूप से उसके पीछे पीछे चलता हूं। और कभी कभी चलते हैं, वहां पर तो आपने ये कहा ना कि नाहम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां जहां पर मेरे भक्त मेरे विमल यश का गान करते हैं, वहां वहां पर हे नारद मैं रहता हूं, वास्तव में मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता हूं, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं। कहने का तात्पर्य यह कि भगवान वैकुंठ में रहते हैं, क्योंकि ऐसा भी उल्लेख शास्त्रों में है, लेकिन भगवान को वैकुंठ में रहना पड़ता है, रहना नहीं चाहते, ये यहां पर इसका तात्पर्य है। लेकिन भगवान भक्तों के हृदय में रहना चाहते हैं और रहते भी हैं, वैकुंठ में रहते हैं लेकिन रहना नहीं चाहते, क्योंकि वहां पर प्रायः विधि मार्ग का अवलंबन करने वाले भक्त हैं। परंतु जो उनके शुद्ध प्रेमी भक्त होते हैं, उनके हृदय में नारद जैसे, जो कि विधि मार्ग का त्याग करके राग मार्ग का अवलंबन करते हैं, इसलिए तो कहा गया ना कि ज्ञान विमुक्त भक्ति परमाहा प्रेमैक निष्ठास्ततः। जो ज्ञान विमुक्त जो प्रहलाद आदि भक्त हैं, उनसे अधिक प्रेमिक निष्ठा वाले नारद आदि भक्त, उद्धव आदि भक्त उनको अधिक प्रिय है उपदेशामृत में। तो जो केवलारति से युक्त, महात्म्य ज्ञान युक्त रति नहीं, केवलारति से युक्त जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, उन प्रेमी भक्तों के पीछे पीछे श्री भगवान चलते हैं। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि वे प्रेमी भक्त जब जब आपका कीर्तन करते हैं, नारद आदि जो प्रेमी भक्त हैं, वो जब जब जितने समय के लिए यावत पर्यंत आपके विमल यश का गान करते हैं, क्या केवल तावत पर्यंत उतने समय मात्र के लिए ही आप जो है उनके उनके पास रहते हैं? क्योंकि आपने तो ये कहा ना कि आपकी उपस्थिति भक्तों के समक्ष तभी होती है जब वे आपका कीर्तन करें। तो भक्त सदैव तो आपका कीर्तन नहीं करते रहता है, भक्त दूसरी भी लौकिक क्रियाओं को करता है। जैसे जब भोजन का समय आता है तो भोजन ग्रहण करता है, जब शौच का समय आता है तो शौच भी जाता है, स्नान इत्यादि भी करता है, शयन भी करता है, हर समय तो आपका कीर्तन नहीं करता है। और आपने तो ये कहा कि मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, जिस स्थान पर मेरे भक्त गायन करते हैं उनके गायन करने के कारण मैं वहां पर जाता हूं। तो यहां पर प्रश्न उठता है कि क्या आप भगवान हैं, क्या आप अपने भक्तों की सन्निधि में केवल उतने समय पर्यंत के लिए रहते हैं कि जितने समय तक वो आपका गान करते रहे और फिर आप वहां से चले जाते हैं? ना ना ना, अनुव्रजाम्यहम नित्यम, मैं नित्य ही सदैव ही जिस प्रकार से सततम कीर्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, मेरे भक्त सदैव मेरा कीर्तन करते हैं, सतत मेरा कीर्तन करते हैं। प्रश्न फिर से ये उठता है, लेकिन जब हम उन भक्तों के व्यावहारिक जीवन में देखते हैं तो वो आपका सतत कीर्तन करते हुए तो नहीं पाए जाते। तो देखिए, मध्यम भागवत और कनिष्ठ भागवतों की बात तो पृथक है, परंतु जो उत्तम भागवत है, जिनको प्रेमा भक्ति भाव भक्ति प्राप्त हो चुकी है, जो भक्ति के मार्ग में सिद्धि की अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, उन प्रेमी भक्तों के पक्ष में यदि वो अन्य लौकिक क्रियाओं को कर भी रहे हो, मान लीजिए शयन कर रहे हो, मान लीजिए स्नान कर रहे हो, मान लीजिए शौच जा रहे हो, भोजन इत्यादि कर रहे हो, तो उन लौकिक क्रियाओं को करते समय भी उनका भगवत स्मरण छूटता नहीं है। उसका वहां पर प्रमाण भी दिया गया ना पुराणों में कि एक बार भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में थे, अर्जुन के समीप गए, अर्जुन जो है शैया पर शयन कर रहे थे, लेकिन उनके रोम रोम में से कृष्ण नाम सुनाई दे रहा था। तो यही सततम कीर्तयन्तो माम का तात्पर्य है। जरूरी नहीं है कि वो जो है हाथ में करताल लिए ही 24 घंटे कीर्तन करता है, ये तो असंभव है, क्योंकि शयन आदि दूसरी क्रियाएं भी करनी पड़ती हैं। थोड़े समय के लिए तो विक्षेप आ ही जाता है उसमें। कहने का तात्पर्य उसका जो स्मरण है वो सतत चलता रहता है। तो भगवान ने कहा कि जैसे मेरे प्रेमी भक्त का स्मरण सतत चलता रहता है, सततम कीर्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, ठीक उसी प्रकार से मेरा भी प्रेमी भक्तों के पीछे पीछे जो अनुगमन है, अनुवर्तन है, वो भी सतत चलता रहता है। इसलिए अनुव्रजाम्यहम नित्यम, और आप केवल अनुगमन ही करते हो। पहले गीता में तो साधारण बात कही गई कि ऐसे अनन्य प्रेमी भक्तों का जो योग क्षेम है वो मैं वहन करता हूं, उसकी चिंता का भार उनके ऊपर नहीं है, वो मेरे ऊपर है। तेषाम नित्याभियुक्तानाम योग क्षेमम वहाम्यहम। परंतु गीता से भी एक विशेष बात भागवत के इस श्लोक में प्रकट की गई कि अनुव्रजाम्यहम नित्यम, मैं केवल योगक्षेम आदि का वहन नहीं करता हूं, उनको क्या चाहिए उस पदार्थ का मैं योग उनसे करवाऊं, और उनके पास जो ऑलरेडी जो वो पजेस करते हैं, जो उनके पास है, उनकी मैं केवल रक्षा करता रहा हूं? ना ना ना, मैं केवल ये दो ही कार्य नहीं करता, मैं तो उनके पीछे पीछे भी चलता हूं। ये एक अपूर्व बात कही, और अब इससे भी एक अपूर्व बात कहेंगे श्लोक के चतुर्थ चरण में। अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयये त्यंघ्री रेणुभिः, मैं केवल उनके पीछे पीछे नहीं चलता, क्योंकि उनके पीछे पीछे चलने में मेरा वास्तविक प्रयोजन जो है वो ये है कि मैं जब मेरा भक्त आगे जाएगा तो उसके पीछे जो उसके चरण चिन्ह अंकित हो जाएंगे भूमि पर, उस चरण चिन्हों से मैं रज के कणों को उठाऊंगा, और उन रज कणों को उठाकर मैं अपने मस्तक पर उसको भूषण के रूप में, आभूषण के रूप में मैं धारण करूंगा। अपने भक्त की चरण रज को मैं आभूषण के रूप में धारण करूंगा, इसीलिए मैं उनका अनुगमन करना चाहता हूं। इसलिए भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विज, मैं भक्तों के द्वारा सदैव पराधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, क्योंकि वो मेरे प्रेमी भक्त मुझे, यद्यपि मैं अजित हूं, तीन लोकों में कोई नहीं जीत सकता मुझे, भूर्भुवः स्वः भूर्भुवः स्वः, तीनों लोकों में मुझे कोई नहीं जीत सकता, लेकिन तथापि हे अजित, आप कर्मी ज्ञानी योगियों के द्वारा न जीते जाने पर भी, सुर तथा असुरों के द्वारा न जीते जाने पर भी, क्योंकि यस्यांतम न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, जिनके आदि मध्य और अंत का पार न सुर पा सकते हैं न असुर पा सकते हैं, ऐसे अनंत महिमा वाले सत्यम ज्ञानम अनंतम जो ब्रह्म स्वरूप साक्षात श्री गोविंद देव है, उनका पार उनके प्रेमी भक्त पा लेते हैं, उनको अपने वश में कर लेते हैं। इसीलिए तो कहा गया ना कि अहम भक्त पराधीनो ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव जीवन्ति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिताः श्रुतिगताम तनुवांग मनोभिर ये प्रायशो अजित जितोप्यसित स्त्रीलोक्याम। भगवान अजित है, किसी के द्वारा नहीं जीते जा सकते। देव हो चाहे असुर हो, दानव हो चाहे कर्मी ज्ञानी योगी हो, लेकिन अपने प्रेमी भक्तों के द्वारा वो सहजता से जीत लिए जाते हैं। इसलिए प्रेमा भक्ति का लक्षण है कृष्णाकर्षिणी कृत्वा हरिम प्रेम भाजम प्रियवर्ग समन्वितम। जो भगवान हरि को ही केवल आकर्षित न करे और भक्त के वशीभूत न बनाए, परंतु उन हरि के साथ साथ उनके नित्य सिद्ध जो परिकर हैं श्री राधा ललिता विशाखा श्रीराम सुबल मधुमंगल नंद यशोदा रक्तक पत्रक चित्रक आदि, उन समस्त परिकरों को भी भगवान के साथ साथ उस भक्त के वशीभूत करे या कराए, उसको प्रेमा भक्ति कहेंगे। वो श्री कृष्णाकर्षिणी यानी कृष्ण और उनके पार्षद सभी को उस भक्त के वशीभूत बना दे, उस भक्त के वश में ला दे, उसको कहते हैं प्रेमा भक्ति। तो यहां पर ये जो कहा गया इसका तात्पर्य यही है कि भक्त भगवान को अतीव प्रिय है, और जो गुरु होता है वह तो महाभागवत की अपेक्षा भी भगवान को अधिक प्रिय होता है। यहां पर तो भक्तों की बात की गई है कि जो मेरे प्रेमी भक्त हैं उनकी चरण रज का मैं आकांक्षी हूं, परंतु जो आचार्य है जो गुरु है वो भक्त तो है ही, लेकिन भक्त से भी एक स्टेप और आगे है। इसीलिए तो वहां पर कहा गया ना श्रीमद् भागवत में कि नैवो पयन्त्यपचितिम् कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतमृद्धमुदः स्मरन्तः योऽन्तर्बहिस्तनुभृताम् अशुभम् विधुन्वन् आचार्य चैत्यवपुषा स्वगतिम् व्यनक्ति। कि हे भगवन, यदि हम ब्रह्माजी के समान दीर्घ आयु को प्राप्त करके भी आपके द्वारा किए गए उपकार का बदला चुकाना चाहे तो हम नहीं चुका सकते। अरे बदला चुकाने की तो बात ही दूर रहे, आपके द्वारा जो हम जीवात्माओं के प्रति उपकार प्रदर्शित किया गया है उस उपकार का वर्णन करने में भी हम समर्थ नहीं है ब्रह्मा के समान दीर्घ आयु को प्राप्त करके। ब्रह्मा के समान दीर्घ आयु को प्राप्त करके हम उस उपकार का वर्णन करने में भी ठीक ठीक समर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि योंतर बहिस्तनुभृताम अशुभम विदुन्वन आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति। कि आप बाहर और अंदर दोनों ओर से आप जो है जीव की रक्षा करते हैं। आप जीव की रक्षा क्यों करते हैं? माया के उत्पीड़न से आप जीव की रक्षा इसीलिए करते हैं क्योंकि जीव गोस्वामी पातत्व संदर्भ में लिखते हैं कि अतः श्री भगवत एव सर्वहितोपदिष्टित्वात् सर्वदुःखहरत्वात् रश्मीनाम सूर्यवत् सर्वेषां परम स्वरूपत्वात् और सर्वाधिक गुणशालित्वात् परम प्रेम योग्यत्वमिति प्रयोजनम च स्थापितम्। तत्व संदर्भ में जीव गोस्वामी ने अंत में यह सिद्धांत स्थापित किया कि भगवान को परम प्रेम योग्य क्यों माना जाना चाहिए, भगवान को परम प्रेम के योग्य क्यों माना जाना चाहिए? क्योंकि जो प्रेम होता है भक्त के हृदय में उस प्रेम का आश्रय तो भक्त स्वयं होता है आश्रयालंबन विभाव होने के कारण, परंतु उस प्रेम के उस भक्त के हृदय स्थित रति के प्रीति के जो विषय हैं वो केवल श्री कृष्ण है। कृष्णश्च कृष्ण भक्ताश्च बुधैरालंबनामताः रत्यादेर विषयत्वेन तथा धारतयापि च भक्ति रसामृत सिंधु। विषयालंबन कृष्ण है रति के उस प्रेम के उस प्रीति के, परंतु उसका आश्रय जो है भक्त है। तो भगवान उस रति के द्वारा प्रेम करने योग्य क्यों है, क्यों भगवान को ही प्रेम किया जाए? उसके चार कारण बताते हैं। अतः श्री भगवत एव सर्वहितोपदिष्टित्वात्, क्योंकि श्री भगवान समस्त जीवात्माओं के हित के विषय में न केवल चुप्पी साध कर जो है सोचते रहते हैं परंतु उपदेश भी देते हैं। उपदेश भी अनेक प्रकार से देते हैं। एक तो ये कहा गया ना कि माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, अतएव कृष्ण कैला वेदादि पुराण। माया मुग्ध जो जीव है उसको स्वतः भगवत ज्ञान नहीं होता है, तो उसको भगवत ज्ञान कराने के लिए उसकी भगवत विमुक्ता को परेश वैमुख्य को नष्ट करने के लिए कृष्ण स्वयं ही वेद पुराण इत्यादि शब्द ब्रह्म के रूप में अवतरित होते हैं। अस्य महतः भूतस्य निःश्वसितम् एतद् यद् ऋग्वेदः यजुर्वेदः साम अथर्वांगिरसः इतिहास पुराणः पंचमो वेद उच्यते। ये जो कहा गया वहां पर याज्ञवल्क्य उपनिषद में कि हे मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य निज भार्या मैत्रेयी के प्रति लक्ष्य करके कहते हैं कि हे मैत्रेयी देखो ये जो वेद पुराण उपनिषद पुराण पंचरात्र इत्यादि ये जो मूल शास्त्र हैं, ये जो सत शास्त्र हैं, ये सत शास्त्र साक्षात वो जो भगवान कारण दक्षाई महाविष्णु है उनके उच्च श्वास से प्रकट होते हैं सृष्टि के समय। जब ये भौतिक जगत की सृष्टि होती है तो सृष्टि के समय में भगवान के उच्च श्वास से एट द टाइम ऑफ हिज एक्सेलेशन, द एक्सेलेशन ऑफ कारणारण वशाई महाविष्णु, जब महाविष्णु उच्च श्वास लेते हैं यानी बाहर श्वास फेंकते हैं उसी समय उनके रोम कूपों में से तो अनेकानेक अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, परंतु उनके श्वास से ये वेद पुराण इत्यादि शास्त्र प्रकट होते हैं और उन शास्त्रों को शब्द ब्रह्म कहा गया क्योंकि भगवान ही उन शास्त्रों के रूप में प्रकट होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ये कहा गया ना कि कृष्णे स्वधामो पगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुनोदितः, स्वयं श्री कृष्ण ही श्रीमद् भागवत शास्त्र के रूप में कलयुग में अज्ञानांध जीवों को प्रकाशित करने के लिए श्री भागवत शास्त्र रूपी सूर्य के रूप में प्रकट होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहां पर यही है कि भगवान एक तो शास्त्रों के रूप में शब्द ब्रह्म के रूप में प्रकट होते हैं जीवात्माओं के ऊपर कल्याण करने के लिए, केवल उनके हित के बारे में चुप्पी साधकर सोचते नहीं है गुमसुम की तरह, कुछ करके भी दिखाते हैं सर्वहितोपदेष्टृत्वात्। जीव गोस्वामी ने इसीलिए कहा कि भगवान समस्त जीवों के हितैषी हैं, सुहृद हैं, और वो प्रतिज्ञा तो पहले ही कर चुके हैं गीता शास्त्र में, सुहृदः सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्ति पृच्छति, मैं समस्त जीव मात्र का जो है सुहृद हूं, वेल विशर हूं, हितेच्छु हूं, शुभ चिंतक हूं। और फिर भगवान दूसरे दो रूपों में भी कृपा करते हैं जो इस श्लोक में कहा गया, नैवो पयन्त्य पचितिम कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतमृद्ध मुदः स्मरन्तः योऽन्तर्बहिस्तनुभृतम अशुभम अशुभम विदुन्वन् आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति। भगवान एक तो बाहर से आचार्य के रूप में गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, यानी वो जो गुरु अथवा आचार्य है वो तो जीवात्मा है, वो तो तटस्था शक्ति का अंश है, वो तो जीव है, परंतु जीव होने के उपरांत भी, जीव होने के बावजूद भी उस भगवत भक्त के अंतःकरण में श्री भगवान जो कि आदि गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, उन श्री भगवान के द्वारा गुरु तत्व का व्यष्टि अंश उस महाभागवत के अंतःकरण में स्थापित किया जाता है। जैसे ये कहा गया ना कि श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचारीला सर्वतत्व निरूपणे प्रवीण कोरीला चैतन्य चरितामृत में, कि महाप्रभु जी ने श्री रूप गोस्वामी के हृदय में शक्ति का संचार किया ताकि जो है श्री रूप गोस्वामी केवल रस तत्व ही नहीं समस्त जितने भी भक्ति सिद्धांत के तत्व हैं उनका निरूपण करने में पूर्णतया समर्थ हो जाएं। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीम स्मृतिम हृदि, और जैसे विधाता ब्रह्मा के हृदय में भगवान श्री नारायण ने सृष्टि के आदि में वो जो ज्ञान है वेदों का वो संकल्प मात्र से प्रकाशित किया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यन्ति असुरयः, ठीक उसी प्रकार से प्रभुर विधौ प्रागिव लोक सृष्टिम वृंदावनियाम रसकेली वार्ताम कालीन लुप्ताम निजशक्ति मुत्कः। तो जिस प्रकार से प्रभु ने विधाता ब्रह्मा के हृदय में सृष्टि के पूर्व में वो ज्ञान संकल्प मात्र से प्रकाशित किया, उसी प्रकार से जो भगवान है वो उनका जो शुद्ध भक्त होता है किसी विशिष्ट महाभागवत के अंतःकरण में अपनी जो गुरु तत्व की शक्ति है उस गुरु तत्व की शक्ति का एक अंश विशेष फेंकते हैं, निक्षिप्त करते हैं, जैसे रूप के हृदय में निक्षिप्त किया उसी तरह से भगवान की जो समष्टि गुरु शक्ति है, समष्टि गुरु शक्ति के प्रतीक भगवान स्वयं है क्योंकि वो जगत गुरु है, आदि गुरु है, आदि गुरु जगत गुरु होने के कारण उनमें आदि गुरुत्व और जगत गुरुत्व होने के कारण श्री भगवान समष्टि गुरु शक्ति के प्रतीक हैं, एग्रीगेट पोटेंसी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, ये जीव गोस्वामी जी भक्ति संदर्भ में समझाते हैं। परंतु वो जो समष्टि गुरु शक्ति है उस समष्टि गुरु शक्ति का एक व्यष्टि अंश सेग्रीगेटेड minute portion of that aggregate power of being a spiritual master. वो जो segregated portion है, segregated minute fragmental portion of the aggregate गुरु शक्ति, उस समष्टि गुरु शक्ति का एक जो छोटा सा व्यष्टि जो अंश है, वो अंश श्री भगवान महाभागवत के अंतःकरण में प्रकाशित करते हैं, और उस अंश से आविष्ट होने के कारण वो महाभागवत, महाभागवत होने के बावजूद भी अब भक्त तत्व से थोड़ा पृथक माना जाएगा, उसकी गणना जो है अब गुरु तत्व में होगी। वंदे गुरुन ईश भक्तान ईशम ईशावतारकान, इसीलिए गुरु तत्व को भक्त तत्व से थोड़ा पृथक माना गया, और गुरु भगवान को भक्त से भी अधिक प्रिय है। क्यों? क्योंकि भगवान जीवात्मा के हित के लिए सर्वहितोपदिष्टत्वात्, जो जीव गोस्वामी चार कारण बताते हैं क्यों भगवान को ही प्रेम करना चाहिए। एक तो भगवान जीवों के हित के विषय में निरंतर चिंता रहता है, शास्त्रों के रूप में प्रकट होते हैं, शब्द ब्रह्म के रूप में प्रकट होते हैं, और दूसरा जीवात्माओं के बाहर जीवंत महाभागवत के रूप में, लाइव महाभागवत। वी आर नॉट एडवोकेट्स ऑफ द पोस्ट समाधि प्रॉक्सी थियरी। जीवंत महाभागवत का जो है चरणाश्रय ग्रहण करना पड़ेगा, जो समझने वाले हैं उस संकेत को समझ लेंगे। जीवंत महाभागवत का जो है चरणाश्रय ग्रहण करना पड़ेगा, पोस्ट समाधि प्रॉक्सी थियरी से यहां पर काम नहीं चलेगा। तो योंतर बहिस्तनुभृताम अशुभम विदुन्वन, जो बाह्य रूप में गुरु के रूप में प्रकाशित होते हैं, यानी वो गुरु तो जीव है, परंतु उस जीव के अंतःकरण में भगवान की समष्टि गुरु शक्ति का एक व्यष्टि अंश मात्र आ जाता है, इसलिए वो गुरु कहलाने के योग्य हो जाता है, और इसीलिए उसको भगवत स्वरूप माना गया आचार्य माम विजानियाम इस श्लोक में, क्योंकि भगवान का अंश उसमें आया ना, इसलिए वो भगवत स्वरूप माना गया। और अंतर्यामी के रूप से भगवान दो प्रकार से कृपा करते हैं, वैसे तीन प्रकार से, शास्त्र के द्वारा, गुरु के द्वारा बाह्य रूप में, और आंतरिक रूप में भगवान कैसे कृपा करते हैं, अंतर्यामी परमात्मा के रूप में विद्यमान रहकर, क्योंकि वो अंतर्यामी परमात्मा ही तो भक्ति मार्ग के साधक को समय समय पर ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते, अंदर से प्रेरणा देता है ना वो अंतर्यामी परमात्मा। इसीलिए तो चरितामृत में कहा गया कि कृष्ण जोदी कृपा करेन कौन भाग्यवाने, गुरु अंतर्यामी रूपे सिखाया आपने। यदि कृष्ण जो है किसी भाग्यवान के ऊपर, भक्ति सुकृतवान के ऊपर, ज्ञान सुकृतवान और कर्म सुकृतवान की बात नहीं हो रही है यहां पर, सुकृतियां तीन प्रकार की मानी गई हरिनाम चिंतामणि के आधार पर, तो जो भक्ति सुकृति है, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही भक्ति प्रकाशित होती है, भक्ति सुकृति के द्वारा साधन भक्ति प्रकाशित होगी, और साधन भक्ति के द्वारा प्रेमा भक्ति प्रकाशित होगी, इसलिए भक्ति को छोड़कर भक्ति को प्रकाशित करने का दूसरा कोई कारण नहीं है। कोई भी इतर पदार्थ, कोई भी भिन्न पदार्थ भक्ति के अलावा भक्ति को प्रकाशित नहीं कर सकता, एकमात्र भक्ति ही भक्ति को प्रकाशित कर सकती है, भक्ति सुकृत साधन भक्ति को, और साधन भक्ति प्रेमा भक्ति को प्रकाशित करेगी, इसलिए भक्तिया संजाताया भक्तिया भागवत में सिद्धांत स्थापित किया गया, भक्ति से ही भक्ति प्रकट होगी। तो कृष्ण यदि कृपा करे न कौन भाग्यवान है, यदि कोई भाग्यवान जो कि भक्ति सुकृतवान है उसके ऊपर कृष्ण कृपा करते हैं, तो कृष्ण बाह्य रूप से गुरु के रूप में प्रकट होकर, वो भी वर्तम प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और भजन गुरु, चार प्रकार के गुरुओं के रूप में प्रकट होकर, और आंतरिक रूप से ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते, अंतर्यामी परमात्मा के रूप में प्रकट होकर उसके पथ की जितनी भी बाधाएं हैं, कंटक है, उन अवरोधों को दूर करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए गुरु जो है एक साधारण महाभागवत की अपेक्षा भी भगवान को अधिक प्रिय है। जब साधारण महाभागवत के पीछे पीछे भगवान दौड़ने को तैयार है, उसकी चरण रज को ग्रहण करने के लिए, तब भला जो गुरु जो इस प्रकार से जीवात्माओं को भगवत सम्मुख बनाता है, उसके प्रति तो भगवान जो है कितने अधिक, मतलब कहने का तात्पर्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के जीवन की घटना है। जब गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने समाधि ले ली, उस समय ये जितने भी अन्य बाबा जी लोग वहां पर उपस्थित थे, अन्य गौड़ीय वैष्णव जिनमें कुछ बाबा जी थे, कुछ जाति गोस्वामी थे इस प्रकार से, तो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कुछ क्षण पश्चात ही पता चला कि मेरे गुरु जो है नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए, तो दौड़े दौड़े वहां पर आए। तो उन बाबा जियों ने कहा कि तुम्हारे गुरु की आज्ञा थी कि उनको रस्सी से बांधकर जो है नवद्वीप की गलियों में, वीथियों में, मार्गों में, पल्लियों में जो है घसीट कर वहां तक गंगा जी तक ले जाया जाए, जहां पर उनको समाधि देनी है। तो उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने इसका विरोध किया कि नहीं, ये भले ही ये बात उनकी अंतिम इच्छा हो, ये जो बात आप कह रहे हैं उनको घसीट के खींच के ले जाने की, रस्सी से उनकी रस्सी से उनके पैरों को बांधकर, ये भले ही उनकी अंतिम इच्छा हो, परंतु इसका पालन मैं उनका शिष्य नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं, प्रेमाधिक्य के कारण उनमें दैन्याधिक्य भी होता है, दैन्याधिक्य के कारण वो इस प्रकार की बातें कहते हैं। परंतु क्या हमारे लिए ये उचित है? अरे मेरे जो गुरुदेव है उनके चरण कमल की रज को तो धारण करके साक्षात श्री व्रज के धीर ललित नायक जो श्री श्याम सुंदर रसिक शेखर हैं, वो भी कृत कृतार्थ हो जाएंगे, और तुम उनको घसीट के ले जाने की बात कर रहे हो। इसीलिए तो वहां पर राधा रस सुधा निधि में प्रबोधानंद सरस्वती पाद क्या कहते हैं, क्योंकि भगवान के समस्त भक्तों में सर्वाधिक श्रेष्ठ कौन है? एकमात्र वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधिका। इसीलिए राधा रस सुधा निधि में क्या कहा गया, यस्याः कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि तस्याः नमोस्तु वृषभानु भूवो दिशेपि यस्याः कदापि वसनांचल खेलनोत्थ। हम देखिए, जिन श्रीमती राधिका, जिन श्रीमती राधिका का जो वसनांचल है, श्रीमती राधिका कैसे वस्त्र को धारण करती है? स्वयं गौरांगी होने के कारण नील वर्ण की शाटिका को और रक्त वर्ण का जो कुछ वस्त्र है, रक्त वर्ण का कुछ वस्त्र और नील वर्ण की शाटिका, इसको श्री वृषभानुनंदिनी धारण करती है। तो श्रीमती वृषभानुनंदिनी की साड़ी से स्पर्श को प्राप्त हुआ, या श्रीमती राधा जी की साड़ी का जो एक अंचल है, एक जो कोना है, उस राधा जी की साड़ी के अंचल से स्पर्श को प्राप्त हुआ वो जो सुशीतल मंद समीर यमुना जी का स्पर्श करते हुए श्री श्याम सुंदर के पास आता है। यस्याः कदापि वसनांचल खेलनोत्थ, श्रीमती राधा जी का जो वसनांचल है वो जब क्रीड़ा करने लगता है, क्रीड़ा का तात्पर्य जब हवा के झोंकों से हिलने लगता है, वसनांचल की क्रीड़ा किसको मानेंगे, जब वसनांचल वायु के झोंकों से हिलने लगे। तो राधिका जी का वसनांचल जब क्रीड़ा को प्राप्त होता हुआ, यानी वायु के द्वारा हिलोरे खाता हुआ, वायु के द्वारा हिलोरे खाता हुआ जब श्री श्याम सुंदर के पास वो वायु पहुंचती है, तब श्री श्याम सुंदर जो कि योगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि, जो मधुसूदन ब्रह्मा शंकर इत्यादि जो बड़े बड़े सनकादि इत्यादि जो बड़े बड़े जो योगिंद्र हैं, अथवा योगिंद्रों के भी जो ईश्वर हैं, ब्रह्मा शंकर सनकादि आदि जो योगिंद्रों के भी ईश्वर हैं, उन योगिंद्रों के ईश्वरों के लिए भी जिनको प्राप्त करना अतीव दुष्कर है, योगिंद्र दुर्गम गति ही, योगिंद्र भी जिनको, जिन मधुसूदन को सहजता से प्राप्त नहीं कर पाते, ऐसे मधुसूदन अनायास ही राधिका जी के वसनांचल की क्रीड़ा से स्पर्श को प्राप्त हुई, उस वायु का स्पर्श प्राप्त करते हुए अपने आप को धन्याति धन्य मानने लगते हैं, कृत कृतार्थ महसूस करते हैं। वो श्रीमती राधिका जी जिस दिशा में विराजमान है उस दिशा को ही दूर से मेरा नमस्कार, प्रबोधानंद सरस्वती पाद, यस्याः कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी योगिंद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि तस्याः नमोस्तु वृषभानु भुवो दिशेपि। क्योंकि कर्मिभ्यः परितो हरेः प्रियतया व्यक्तिम् ययुर्ज्ञानेन तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमाः प्रेमैक निष्ठास्ततः तेभ्यस्ताः पशुपाल पंकजदृशः ताभ्योऽपि साराधिका पृष्ठा तद्वदीयं तदीय सरसी ताम्नाश्रेत कः कृते। श्रीमती राधारानी से अधिक भगवान को प्रिय दूसरा कोई आश्रयालंबन विभाव नहीं है। समस्त आश्रयालंबन विभावों में राधा जी से अधिक प्रिय और कोई नहीं है समस्त भक्तों में, और वो ही राधा जी आदि गुरुतत्व मानी गई। विशेष करके गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो राग मार्ग की उपासना है उसमें दो प्रकार के गुरु माने गए, सख्य वात्सल्य रस की उपासना वालों के लिए बलराम जी को, नित्यानंद जी को जो है आदि गुरु माना गया, और श्रृंगार भाव से, परकीय भाव से उपासना करने वालों के लिए श्री वृषभानु नंदिनी को आदि गुरु माना गया। और उसी वृषभानु नंदिनी की जो प्रधान दासी है श्री रूप मंजरी, वो रूप मंजरी ही वहां पर मुख्य गुरु रूपा मंजरी है। परंतु हमारे जो गुरु हैं, जैसे हमारे संदर्भ में श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, तो श्रील प्रभुपाद जी भी रूप गोस्वामी के अनुगत होने के कारण, क्योंकि जितने भी आचार्य हैं श्रीमन महाप्रभु के पश्चात वो सभी रूपानुग आचार्य हैं, तो रूप गोस्वामी के रूप मंजरी की अनुगत्य के कारण प्रभुपाद जी का भी गुरु रूपा मंजरित्व सिद्ध हुआ। इसीलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने लिखा ना अपने ग्रंथों में कि राधा सन्मुख संसक्तिम सखी संग निवासिनीम तामहम सततम वंदे गुरु रूपाम परम सखीम। क्योंकि भक्त के दो रूप होते हैं, जो महाभागवत होता है, तो जो आचार्य है वो महाभागवत ही तो है ना, महाभागवत ही तो आचार्य का काम कर सकता है। श्रील प्रभुपाद जी महाभागवत शिरोमणि है, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा था कि मेरा कोई सेनापति भक्त ही, चैतन्य मंगल इत्यादि ग्रंथों में इसका उल्लेख है, मेरा कोई सेनापति भक्त ही समस्त पृथ्वी के कोने कोने में मेरे नाम का प्रचार करेगा। तो सेनापति भक्त होने के कारण प्रभुपाद जी महाभागवतों में शिरोमणि है और रूपानुग श्रेष्ठ है। इसीलिए प्रभुपाद जी के भी दो रूप यहां पर मानने पड़ेंगे, और उन दोनों रूपों को नमस्कार, नमः पद के द्वारा केवल साधक देह को नमस्कार नहीं कर रहे हैं, सिद्ध देह को भी नमस्कार कर रहे हैं। क्योंकि राग मार्ग की जो उपासना है वो दो पटरियों पर चलती है। भक्ति रसामृत सिंधु में इसीलिए तो उल्लेख किया गया कि सेवा साधकरो पेण सिद्धरो पेण चात्र ही तद भाव लिप्सुना कार्या व्रजलोकानुसारतः। सिद्ध देह का तात्पर्य भगवान का जो महाभागवत भक्त है, वो उसका ये शरीर तो हमारे नेत्रों के समक्ष दिखाई पड़ता है, परंतु अपने सिद्ध देह के द्वारा वो भगवान की लीला में भी, जो खास करके जो नित्य सिद्ध परिकर हैं, नित्य सिद्ध जो परिकर हैं, जैसे प्रभुपाद जी हैं, रूप गोस्वामी हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी अपने यथावस्थित देह से तो हमारे समक्ष प्रकट है, लेकिन एक दूसरे देह के द्वारा उसी समय युगपत साइमल्टेनियसली भगवान की लीला में भगवान की सेवा भी कर रहे हैं। इसीलिए तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद को अपने गुरु राधारमण चक्रवर्ती के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहना पड़ा ना गुरुवष्टकम में, क्या कहना पड़ा कि निकुंज यूनो रतिकेली सिद्ध्यई या याली भी युक्तिरपेक्षणीया तत्राति दाक्ष्यादति वल्लभस्य वंदे गुरुः श्री चरणारविंदम। हमारे जो श्री गुरु हैं श्री राधा कृष्ण की युगल, राधा कृष्ण की जो निभृत निकुंज की लीला है उसमें उनकी मंजरी के रूप में सेवा कर रहे हैं, ऐसे हम गुरु को नमस्कार करते हैं, अनेक युक्तियों के द्वारा राधा माधव की सेवा कर रहे हैं और उन दोनों का मिलन करवा रहे हैं। तो गुरु के दो रूप मानने पड़ेंगे, साधक रूप और सिद्ध रूप। तो साधक रूप में तो नमस्कार होता ही है, उसके हमने ये कारण बताए कि साधक रूप जो होता है गुरु का, जो हमें दिखाई देता है हमारे पार्थिव शरीर से, पार्थिव शरीर से जो दिखाई देता है, तो साधक देह जो होता है, साधक रूप जो होता है गुरु का, वो साधक रूप के द्वारा तो भगवान जीवों के ऊपर कृपा करते हैं। आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति, भगवान स्वयं ही आचार्य के रूप में प्रकट होते हैं, ये जो कहा गया अभी अभी जिस श्लोक की व्याख्या 5 मिनट पहले हुई, तो भगवान आचार्य के रूप में प्रकट होते हैं, ये आचार्य का साधक रूप। और उसका सिद्ध रूप कौन सा है, राधा सन्मुख संसक्तिम सखी संग निवासिनीम तामहम सततम वंदे गुरु रूपाम पराम सखीम। मैं उन गुरु रूपा सखी को नमस्कार करता हूं जो कि साक्षात मेरे गुरु ही राधा माधव की युगल लीला में सखी बने हुए हैं, और जो कि ललिता विशाखा इत्यादि ब्रजांगनाओं के यूथ में विराजे हुए हैं और सदैव राधा माधव के प्रिय पात्र बने हुए हैं अनेक प्रकार की लीलाओं के, अनेक प्रकार की सेवाओं के, परिचर्याओं के द्वारा। ऐसी जो गुरु रूपा मंजरी है, ऐसी जो गुरु रूपा सखी है, उनको हम नमस्कार करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी के भी दो रूप हैं, साधक रूप और सिद्ध रूप। सिद्ध रूप से वो नित्य लीला में उस समय भी सेवा दे रहे थे जिस समय वो यहां पर प्रचार कर रहे थे। तो दोनों ही रूपों को यहां पर नमस्कार किया गया है, नमः। ये नमस्कार का क्या रहस्य है, उसकी विवेचना जो है अभी तक संपन्न हुई। वैसे तो बहुत ही रहस्य है, इस नमः पद की व्याख्या में एक घंटा और लग जाएगा, उसके पश्चात विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय ये इनकी व्याख्या में तो जो है 5-6 घंटे लग सकते हैं। लेकिन अभी समयाभाव होने के कारण काल जो है भगवान का एक स्वरूप माना गया है, इसलिए उसका भी निरादर नहीं करना चाहिए। इसलिए उसकी भी मान मर्यादा को अक्षुण्ण रखते हुए हम इस सत्र को यहीं विराम देते हैं। यदि कोई भूल चूक हो गई हो, यदि कोई त्रुटि हो गई हो, तो जो विज्ञ समुदाय है और विशेष करके कृपा के समुद्र स्वरूप जो वैष्णव है, वो हमें इस पतिताधम को जो है क्षमा करें। और यदि कोई जिज्ञासा, प्रश्न इत्यादि, मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप जैसे वरिष्ठ वैष्णवों को मेरे इस उद्दंड भाषण को सुनना पड़ रहा है, लेकिन मुझे क्षमा कीजिएगा यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो। कोई प्रश्न जिज्ञासा आदि, ठीक है। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।